नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायः सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवके नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 30 श्लोक संख्या 47 तत्रावशिष्टा ये वृक्षा भेता दुहितरम तदा उजहृस्ते प्रचेतुभ्या उपदेष्टा स्वयं भुवा तत्रावशिष्टा ये वृक्षा भेता दुहितरं तदा उजहृस्ते प्रचेतोभ्या उपदृष्टा स्वयं भुवा तत्रावशिष्टा ये वृक्षा भेता दुहितरं तदा उजहृस्ते प्रचेतोभ्या उपदेष्टा स्वयं भुवा तत्रावशिष्टा ये वृक्षा भेता दुहितरं तदा उजहृस्ते प्रचेतोभ्या उपदेष्टा स्वयं भुवा
हरे कृष्ण पढ़िए
तत्रावशिष्टा ये वृक्षा भेता दुहितरं तदा उजहृस्ते प्रचेतुभ्या उपदेष्टा स्वयं भुवा तत्रावशिष्टा ये वृक्षा भेता दुहितरं तदा उजहृस्ते प्रचेतुभ्या उपदेष्टा स्वयं भुवा
माताजी माताजी
शब्दार्थ तत्र वहां अवशिष्टा शेष बचे हुए ये जो वृक्षा वृक्ष भेता भयभीत दुहितरम अपनी कन्या को तदा उस समय जोहरो लाकर दिया ते उन्होंने प्रचेतभ्य प्रचेताओं को उपदेष्टा उपदेश पाकर स्वयं भुवा ब्रह्मा द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद बचे हुए वृक्षों ने प्रचेताओं से डर कर ब्रह्मा की राय से अपनी कन्या लाकर तुरंत उन्हें दे दी। दोहराइए बचे हुए वृक्षों ने प्रचेताओं से डर कर ब्रह्मा की राय से अपनी कन्या लाकर तुरंत उन्हें दे दी। तात्पर्य इस अध्याय के 13वें श्लोक में वृक्षों की कन्या का उल्लेख हुआ है। यह कन्या कंडू तथा प्रमलोचा से उत्पन्न हुई थी। प्रमलोचा अप्सरा इस शिशु को जन्म देने के बाद तुरंत स्वर्ग लोक को चली गई। शिशु को रोते देखकर चंद्र राजा को उस पर दया आ गई और उसने उसके मुंह में उंगली डालकर उसके प्राणों की रक्षा की। वृक्षों ने इस कन्या का पालन पोषण किया और जो वह बड़ी हो गई तो ब्रह्मा के आदेश से उन्होंने उसे लाकर प्रचेताओं की पत्नी रूप में उन्हें सौंप दिया। इस कन्या का नाम मारीसा था, जैसा कि अगले श्लोक में व्याख्या की जाएगी। वृक्षों के प्रमुख देव ने लाकर कन्या सौंपी। इस प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी का कथन है, वृक्षा तदिष्ठाता त्रिदेवता। वृक्षों का अर्थ उन वृक्षों का अधिष्ठाता देवता से है। वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि जल का अधिष्ठाता देव होता है, इसी प्रकार वृक्षों का भी अधिष्ठाता देव होता है। प्रचेतागण समस्त वृक्षों को भस्मसात किए जा रहे थे क्योंकि वे वृक्षों को अपना शत्रु मान रहे थे। प्रचेताओं को शांत करने के लिए ब्रह्मा की राय से वृक्षों के प्रमुख देव ने पुत्री मारीसा लाकर उन्हें सौंप दी। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय में किस प्रकार प्रचेतागण जब 10,000 वर्ष तपस्या करके बाहर आए तो देखे कि पृथ्वी संपूर्ण रूप से वृक्षों से ढक गई थी, क्योंकि राजा प्राचीन बरहिषद के तपस्या करने चले जाने के बाद पृथ्वी का कोई शासक नहीं रह गया था और प्राचीन बरहिषद अपने पुत्रों के आने से पहले ही वो वन की ओर प्रस्थान कर गए थे। प्राय वैदिक संस्कृति है कि पंचदशम वनम व्रजेत, पहले के राजा लोग या आम में जनता 50 वर्ष के बाद जंगल में भोजन करने के लिए जाते थे। पंचदशम मतलब 50 वर्ष में लोग जंगल में जाते थे, वानप्रस्थ लेते थे। वानप्रस्थ का अर्थ होता है वन की ओर प्रस्थान करना और वन में रहना। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं वन का अर्थ होता है वृंदावन, प्राय वृंदावन में लोग जाते हैं। वन विशेष वनों में वृंदावन है जो भगवान की रमणीय भूमि है, जो भगवान की लीला स्थली है। तो भगवान की लीला स्थलियों में लोग प्रीति तद बसती स्थले, प्रीति पूर्वक भक्ति में ही सेवा के लिए भगवान की लीला स्थलियों में राजा लोग जाकर भजन करते थे। जैसे राजर्षि भरत पुलहाश्रम में गंडकी नदी के तट पर जाकर भजन कर रहे थे, उसी धृतराष्ट्र महाराज विदुर जी के आदेश से हरिद्वार में आश्रय लिए, गंगा के तट, गंगा का आश्रय लेकर भजन किए। तो प्रायः लोग तीर्थों का आश्रय लेकर के भगवान का भजन करते हैं और घर गृहस्थी से उपराम होकर के छुट्टी लेकर के अपनी जिम्मेवारी को पुत्र के ऊपर दे देते हैं। तो प्राचीन बरहिषद नारद जी के उपदेश से भजन में लग गए थे। इसके बाद इनके पुत्र प्रचेतागण जब 10,000 वर्ष तपस्या कर लिए तो जल से बाहर आए और ब्रह्मा जी या स्वयं भगवान भी उन्हें आदेश दिए कि तुम लोग धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करो और प्रजा उत्पन्न करो। तुम्हें प्रजा की जरूरत थी, जैसे बहुत सारे प्रजापति हैं जो सृष्टि विस्तार करते हैं, प्रवृत्ति मार्ग में सृष्टि का विस्तार करते हैं भगवान के आदेश से या ब्रह्मा जी के आदेश से। जैसे ब्रह्मा जी ने चार कुमारों को भी आदेश दिया था, लेकिन चार कुमार निवृत्ति मार्ग की ओर लग गए। तो वृक्षों पूरी समग्र पृथ्वी वृक्षों से ढक गई थी, कृषि कार्य के लिए जगह खाली नहीं था। पृथ्वी में चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष, कुश पलाश आदि, कुछ कंटक, कुछ कंकरीले वृक्ष भी हो गए थे। तो प्रचेता लोग को बहुत क्रोध हुआ, अपने मुंह से अग्नि प्रकट किए और तीव्र वायु प्रकट किए और वृक्षों को जलाने लगे। ऐसे वृक्षों को जलाने लगे जैसे शिव जी प्रलय के समय में ब्रह्मांड को जलाते हैं। प्रलय के समय शिव जी अपने मुख से अग्नि प्रज्वलित करते हैं और ब्रह्मांड को जलाते हैं। प्रलय का कार्य शिव जी करते हैं। तो जैसे प्रलय के समय शिव जी सृष्टि को भस्म कर रहे थे, उसी तरह वृक्षों को प्रचेतागण भस्म कर रहे थे, जला रहे थे। तो सारे देवता लोग ब्रह्मा जी समेत प्रचेताओं को रोके, क्योंकि वृक्ष भी प्रजा हैं, वृक्षों को भी अनावश्यक नहीं काटना चाहिए। तो ब्रह्मा जी प्रचेताओं को शांत किए कि वृक्ष भी प्रजा हैं, इनमें भी जीव हैं, इनको भी अनावश्यक नष्ट नहीं करना है। जिस राज्य में वृक्ष सुरक्षित रहते हैं तो वहां की जलवायु भी ठीक रहती है। वृक्ष भी हमें फल फूल पत्ते और लकड़ी प्रदान करते हैं, बहुत सारी औषधियां वृक्षों से आती हैं। तो वृक्ष भी हमारे जीवन जीने में सहयोग देते हैं। ऐसे कहा जाता है कि वृक्ष भी परमार्थी हैं, जैसे साधु परमार्थी होते हैं वृक्ष भी परमार्थी होता है और दूसरे के लिए वो फल फूल धारण करता है और सूर्य के ताप में भी खड़ा रहता है, सर्दी में भी खड़ा रहता है, एक तपस्वी की तरह वो तपस्या करता है और जो कुछ भी धारण करता है वो दूसरे को दे देता है। नीति शास्त्र में कहा गया है पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाभः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलुवारिवाह परोपकाराय शतां विभूतयः। शतां विभूतयः सत विभूति का वर्णन होता है, उसमें वृक्षों को भी वर्णन किया जाता है। वृक्ष भी सत विभूति हैं, भगवान के विभूति योग में वृक्ष भी आते हैं, क्योंकि वृक्ष जो है जो फल फूल धारण करते हैं स्वयं नहीं खाते हैं, फूल फल ही पर है, वो दूसरे के लिए फूल धारण करते हैं। और नदी भी जो जल धारण करती है वो दूसरे को देती है। बादल भी जो पानी वर्षा करते हैं जिससे अन्न उत्पन्न होता है वो नहीं खाते हैं, ये परमार्थी कहलाते हैं। तो वृक्षों को भी रक्षा करनी चाहिए, इसलिए बड़े बड़े राजा लोग उनके शासन काल में वृक्ष भी अन्य तुच्छ जीव भी सुरक्षित रहते थे। जिसके राज्य में सारी प्रजा सुखी रहती है, पशु पक्षी वृक्ष, तो वो राज्य जो है सुंदर माना जाता है। भगवान श्री राम के राज्य में सभी सुखी थे, उनके राज्य में आधी भौतिक आध्यात्मिक आधी दैविक क्लेश नहीं था, त्रिताप रहित, किसी को मानसिक क्लेश नहीं था, शारीरिक क्लेश भी नहीं था और दैवी प्रकोप भी नहीं होता था। जैसे कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी भूकंप, कभी युद्ध, अनेक प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, भगवान श्री राम के राज्य में नहीं होते थे। और उनके राज्य में किसी को भी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं होता था। इसलिए भगवान राम के राज्य की शास्त्रों में प्रशंसा होती है। दो राज्य सबसे प्रशंसनीय है, भगवान श्री राम के और युधिष्ठिर महाराज के। युधिष्ठिर महाराज भी वैदिक साहित्य के सबसे सफल शासक हैं और बिल्कुल भगवान के आदेशानुसार वैदिक रीति के अनुसार शासन किए। और जो कुछ भी कर वसूल होता था, टैक्स वसूल किया जाता था, सब प्रजा के लिए खर्च कर दिया जाता था। भगवान श्री राम के राज्य में भी जो भी प्रजा से कर वसूल होता था सब खर्च कर दिया जाता था, उसमें कमीशन नहीं होता था और राजा के पास कुछ नहीं रहता था। भगवान श्री राम के ही वंशज में हुए हैं राजा रघु। रघु के राज्य में भी कहीं चोरी नहीं होता था और जो कुछ भी कर वसूल होता था सब खर्च कर दिया जाता विकास कार्य में। यहां तक एक बार राजा रघु के पास कौस मुनि गए थे वर्तंतु मुनि के लिए दक्षिणा लेने के लिए। तो जब गए उनके राज दरबार में तो देखे कि राजा बिल्कुल एक तपस्वी जैसा जीवन यापन कर रहा है। वो कुश की चटाई पर बैठे हैं, उनके खाने के और पीने के जो पात्र हैं मिट्टी के पात्र हैं, बिल्कुल उनके पास धन नहीं है। तो उन्होंने कारण जानना चाहा। कौस ने पूछा कि हे राजन, आपके राजकोष में इतना धन की कमी कैसे हो गई? उन्होंने कहा कि मैंने विश्वजीत यज्ञ में सब धन की आहुति दे दी है। हमारे पास जो कुछ भी था गो रक्षा के लिए और ब्राह्मणों के लिए और प्रजा के लिए मैंने सब कुछ दान कर दिया है। प्रमाण में उनके पास मिट्टी के पात्र थे, मिट्टी के सकोरे, मिट्टी के थाली। तो कौस ने यह देख करके राजा की बहुत प्रशंसा की मन ही मन। फिर राजा रघु ने कहा कि आपके आने का क्या प्रयोजन है? आप अपने आश्रम से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, वर्तंतु मुनि के आश्रम में कोई कमी तो नहीं है? गायों के लिए घास की कमी तो नहीं हो गई? जलाशयों में पानी की तो कमी नहीं है? आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? गुरु के तपश्चर्या में क्या विघ्न उपस्थित हुआ है? राजा स्वागत करने के बाद कौस से बार बार पूछ रहे, लेकिन कौस कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। पहले के राजा अपने अतिथि के आगमन पर उसका मनोभाव समझकर सेवा करते थे, नहीं तो पूछते थे और अतिथि को भरपूर दान देते थे, जो भी उसकी इच्छा होती थी देते थे। तो कौस ने कहा कि मैं गुरु वर्तंतु मुनि के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के लिए आया था आपके पास। मैंने गुरु को वचन दिया है कि गुरु दक्षिणा के रूप में आपको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दूंगा, लेकिन मैं आपके पास आया तो आपकी स्थिति इस समय बिल्कुल अकिंचन की तरह है। तो राजा रघु ने कहा कि अवश्य मैं आपको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दूंगा, आप कुछ समय के लिए विश्राम कीजिए। तो राजा रघु कुबेर पर चढ़ाई करने के लिए तैयारी करते हैं और जैसे सारी सेनाओं को, चतुरंगनी सेनाओं को तैयार किए, तो राजा रघु ये अतिथि सेवा की भावना को देख करके प्रसन्न होकर उनके कोषागार को भर दिए धन से, चढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं हुई। तो ऐसे बहुत पूर्ववर्ती राजा हुए हैं, जैसे राजा रघु, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, जो जो कुछ भी उनके पास होता था प्रजा के लिए दे देते थे। अब भगवान राम के राज्य की तो बहुत प्रशंसा की गई है कि उनके राज्य में जब वर्षा की जरूरत होती थी तब वर्षा होती थी, जब पानी की जरूरत नहीं होती थी बारिश नहीं होता था। यहां तक कि कहा जाता है कि उनके राज्य में शेर और लोमड़ी एक जगह पानी पीते थे, पशु में भी वैमनस्य नहीं होता था, एक जगह पर हरिण और बाघ पानी पीते थे, पशुओं में भी मैत्री होता था, मतलब किसी में राग द्वेष नहीं होता था भगवान राम के राज्य में, और किसी को भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। आज ऐसे भी विजयादशमी है, राम विजयोत्सव, तो भगवान राम के विषय में ही मुझे बोलना है। तो भगवान श्री राम अपने राज्य में गुप्तचर के रूप में स्वयं जाकर पता लगाते थे कि प्रजा को कोई क्लेश तो नहीं है। एक बार भगवान श्री राम गुप्तचर के रूप में जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने कहा, अपने पत्नी को डांट रहा था कि मैं राम नहीं हूं कि तुम्हें घर में रख लूंगा। धोबी था, उसकी पत्नी रात्रि में कहीं चली गई थी, तो धोबी अपने पत्नी को कह रहा था कि राम सीता 14 वर्ष लंका में रही, जब स्त्री कहीं बाहर रहती है बहुत समय तक तो उसको अपवित्र मान लिया जाता है। तो धोबी कह रहा था कि राम अपने पत्नी सीता का प्रायश्चित नहीं कराए और रख लिए, मैं राम नहीं हूं। इतना शब्द सुनते ही राम ने प्रजा के प्रसन्नता के लिए सीता का त्याग किए थे और लक्ष्मण को आदेश दे कि सीता को ले जाओ जंगल में छोड़ दो। तो भगवान अपने प्रजा का हर बात का ख्याल रखते थे। भगवान श्री राम ऐसे प्रारंभ में उनको दशरथ जी ने राजा बनाने का वचन दिया था, लेकिन उनको वन का राज्य मिला। दशरथ जी तैयारी कर रहे थे कि राम को राजा बनाना है, और प्रजा भी चाहती थी कि राम राजा बने, कि राम एक आदर्श है। तो लेकिन कैकई के कुमंत्रणा से, मंथरा के कुमंत्रणा से कैकई का बुद्धि जो है फिर गया, और कैकई ने जो देवासुर संग्राम में दो वचन मांग लिया था, दशरथ जी स्वर्ग में देवताओं के तरफ से लड़ने के लिए गए थे और युद्ध में देवताओं को विजय दिलाए थे, चक्रवर्ती सम्राट थे तो देवता लोग भी इनको आमंत्रित करते थे युद्ध के लिए, बहुत यशस्वी थे, बहुत बलवान थे, उनका जस जो है 10 दिशाओं में फैला था। यह 10 दिशाओं में रथ से विचरण करते थे, 10 रथ जिनका रथ जो है चारों तरफ जाता था, स्वर्ग में भी जाते थे। तो देवासुर संग्राम में कैकई ने भी अपने वीरता का परिचय दिया था। एक बार रथ के चक्के में जो एक कील होता है टूट गया, तो कैकई ने अपना उंगली उसमें डाल करके चक्के को सपोर्ट दिया था। तो दशरथ यह देख करके उसे बोले, तुम कुछ वचन मांगो, क्या चाहती हो? तो दो वचन वही कैकई ने धरोहर के रूप में रखा था। जब भगवान श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारी हो रही थी तो कैकई ने कहा कि देखो राजा दशरथ तुमसे प्रेम करते हैं लेकिन वो झूठा प्रेम करते हैं, तुम्हारे पुत्र ननिहाल में हैं और उनको बुलाया भी नहीं गया है और राम को राजा बनाने की तैयारी हो रही है। तो कैकई ने पहले मंथरा को डांटा कि ऐसी बात क्यों कर रही हो, राम सबके प्रिय हैं, अगर राम राजा बनेंगे तो अच्छा है, और रघुकुल की ये रीति है कि बड़ा भाई राजा बनता है, बड़ा भाई ही राजा बनता है। तो तुम्हें क्या चाहिए मांगो, राम राजा बनेंगे तो उसके खुशी में तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो मंथरा ने, मंथरा की बुद्धि को देवताओं ने ये कर दिया था, देवताओं के कहने से सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को ये कर दिया था, इसलिए कि अगर राम राजा बन जाएंगे तो जो बड़े बड़े असुर हैं जो जंगलों में उत्पात मचा रहे वो मारे नहीं जाएंगे, अगर भगवान श्री राम जंगल में जाएंगे तब असुरों का वध होगा। ज्यादातर आसुरी प्रवृत्ति के लोग जंगल में रहते हैं, आज भी ज्यादातर लोग जंगल में छिपे रहते हैं, आज के भी आसुरी लोग जंगल में आश्रय लेते हैं। तो पहले भी बड़े बड़े असुर जो है जंगल में रहते थे, इसलिए देवता लोग चाहते थे कि भगवान राम वन में जाएं, और वन में जो साधु लोग रहते हैं वो निर्भय भजन करें और जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग मारे जाएं। तो सरस्वती की सहायता से देवताओं ने मंथरा के द्वारा अपना कार्य सिद्ध कर लिया और अंततः कैकेयी जो है मंथरा के बात में आ गई और दशरथ जी से दो वचन जो धरोहर के रूप में मांगा था उसका प्रयोग किया और एक वचन से राम को वन 14 वर्ष का वनवास मांगा और दूसरे वचन से भरत को राज्य मांग लिया। इसे आहत होकर दशरथ जी बहुत दुखी हुए। दशरथ जी कैकेयी को कहते हैं कि अगर तुम्हें भरत को राजा बनाना है तो बना सकती हो, कोई मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन राम को वन में मत भेजो। राम को वन में क्यों भेजना चाहती हो, राम तो चाहते भी नहीं है राजा बनना, यह मेरा अपना विचार था और सारी प्रजा का विचार था, मैं भी, मुझे भी दशरथ के राजा बनने में कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन कैकेयी ने जो है एक नहीं सुना और भगवान राम को वन में जाना पड़ा 14 वर्ष वनवास और तापस वेश में। आदव राम तपो बना दिगमनम, भगवान तापस के वेश में वन के लिए गमन करते हैं और 14 वर्ष वन में रहते हैं। आदव राम तपो बना दिगमनम हत्वा मृग कंचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंका पुरिदाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन एतद्धि रामायण। संक्षेप में रामायण है, संक्षेप रामायण है जैसे चतुश्लोकी भागवत होता है ना, तो संक्षेप में रामायण है कि आदव राम तपो बना दिगमनम, भगवान तपो, भगवान तप के लिए वन में जाते हैं। जैसे बद्रीनाथ में नर नारायण ऋषि के रूप में भगवान तप करते हैं और रंगनाथ जी में शयन करते हैं और रामेश्वरम में स्नान करते हैं और द्वारका में राजा बनकर राजकार्य चलाते हैं और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी खाते हैं, कितना भी भोग लगता है जगन्नाथ जी खाते हैं। भगवान में सब वृत्ति है, भगवान तपस्या भी करते हैं तो वैसा तपस्या कोई नहीं कर सकता है जैसे बद्रीनाथ में आज तक भगवान तपस्या कर रहे हैं। भगवान क्यों तपस्या करते हैं, लोक मंगल के लिए या आदर्श के लिए। जैसे भगवान श्री राम वन में क्यों गए, दशरथ जी उनको वन जाने के लिए नहीं कहे थे, कैकेयी ने दशरथ जी से कहा था कि इनको वन जाने के लिए कहिए, लेकिन दशरथ जी कहे नहीं थे, लेकिन मनोभाव को समझ करके भगवान आदर्श का पालन किए और वन में गए और 14 वर्ष वन में कठिन तपस्या किए। भूमि पर शयन करते थे, भूमि शयन बलकल बसना, और वृक्षों के छाल और पत्ते को बिछाते थे, बेड बनाते थे या बलकल पहनते थे, वृक्ष का छाल पहनते थे। उनको गांव में जाना मना था, शहर में जाना मना था, तो कपड़े खरीद नहीं सकते थे, जंगल में ही रहना था और जंगल का कंद मूल फल खाते थे और जंगल के पत्ते को और छाल को पहनते थे, गांव में से दूर ही रहते थे। तो कभी कभी जंगल में फल नहीं मिलते थे तो उपवास करते थे, क्योंकि जंगल में फूल फल समय समय पर होता है, हर ऋतु में फल नहीं होता है। तो भगवान कभी कभी उपवास भी करते थे। जैसे कभी कभी गृहस्थ को धनाभाव हो जाता है तो उपवास करना पड़ता है। कभी ऐसे गृहस्थ होते हैं जिनके घर में कभी कुछ नहीं होता है तो उपवास करना पड़ता है। तो गृहस्थ जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है, खाने का भी नहीं होता है। तो भगवान राम लक्ष्मण के सहित सीता जी के साथ में जंगल में जंगल जंगल घूम रहे थे। कहीं मुनि के आश्रम में जाते थे तो कंदमूल खाते थे और पीने के लिए नदी का पानी पीते थे। बरसात में जैसे नदी का पानी मटमैला हो जाता है, बरसात में नदियों का पानी जो है मिट्टी युक्त हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता है, और वो पानी अगर पिएंगे आप तो बुखार होता है या बीमारी होती है। लागई अति पहाड़ कर पानी, पहाड़ का जो जंगल का पानी होता है बरसाती, उसमें लोग बहुत बीमार होते हैं, मलेरिया होता है, बुखार होता है, लेकिन वो पानी भी भगवान पीते थे। जंगल में अनेक विपत्तियां, बड़े बड़े भयंकर राक्षस रहते हैं, सिंह भालू रहते हैं, भगवान श्री राम उन लोगों के बीच में रहे, बल्कि उनको ही उनके साथ मैत्री स्थापित किए। उनके मित्र कौन थे? हनुमान थे, सुग्रीव थे, जांबवंत थे, वही पशु पक्षी नरसिंह नरभक्षी जीव, वही सब उनके मित्र थे। तो 14 वर्ष भगवान श्री राम जंगल में रहे। सर्वप्रथम अयोध्या से जब चलते हैं भगवान तो चित्रकूट में आते हैं। चित्रकूट में बहुत समय तक रहते हैं, कामदगिरी, जहाँ कामदगिरी है जिसकी प्रदक्षिणा करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। फिर वहां से यहाँ आते नासिक में आते हैं, पंचवटी, पंचवटी में रहते हैं जहाँ सोने का मृग का वध किए थे। आदव राम तपो बना दिगमनम हत्वा मृग कांचनम, सोने का मृग का वध करते हैं। लोग कहते हैं कि श्री राम जो सर्वज्ञ हैं वो जानते थे कि ये सोने का मृग नहीं है, फिर भी क्यों उसके पीछे भाग रहे थे? वो माया मृग था। भगवान श्री राम माया के पति हैं, माया के अधिपति हैं, फिर भी माया के पीछे पीछे भाग रहे थे। हत्वा मृग कांचनम, सोने का मृग कहीं उत्पन्न नहीं होता है। असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथा पिरामो लुलुभे मृगाय, यह कभी ऐसा देखा नहीं गया कि सोने का मृग भी जन्म लेता है। असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथा पिरामो लुलुभे मृग, इसके बावजूद भी भगवान श्री राम उसके ऊपर लुब्ध होकर के भाग रहे थे, मायावी मृग के ऊपर भाग रहे थे, जबकि माया के अधिपति हैं। भगवान ऐसा क्यों कर रहे थे? जो सर्वज्ञ हैं, जो सब कुछ जानते हैं, जो सबके अंतरात्मा की बात को भी जानते हैं, सबके अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, अंतरात्मा में भी रहते हैं, तो वो क्यों ऐसे अज्ञ की तरह भाग रहे थे? भगवान की ये लीला है। भगवान ऐसी लीला करते हैं जिसमें सामान्य लोग मोहित हो जाते, अत्यंत विडंबनम। भगवान कभी कभी ऐसी लीला करते हैं कि सामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं, मोहित हो जाते हैं भगवान की लीला को देख करके। जब मृग माया मृग के पीछे श्री राम भाग रहे थे तो अन्य लोग सोच रहे थे कि ये भगवान नहीं हो सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खा रहे थे, पिकनिक मना रहे थे, एक दूसरे से छीन कर खा रहे थे, तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे, ये भगवान नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह भगवान सीता के लिए मृग, सोने का मृग का चर्म लेने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। और अंत में उसका वध किए। तो वास्तव में मृग नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम मृग का क्यों वध किए। भगवान श्री राम मृग का वध नहीं किए थे, वो असुर था, मृग रूप में असुर था, इसलिए उसका वध किए। कुछ लोग कहते हैं कि प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री राम मांस खाते थे, तो शिकार क्यों करने गए थे, दशरथ जी शिकार करने क्यों जाते थे, परीक्षित महाराज शिकार करने क्यों गए थे, क्या वो लोग मांसाहारी थे? नहीं, परीक्षित महाराज शिकार करने गए थे जंगल में आसुरी या ऐसे जंतु जो हिंसक हो जाते थे, नरभक्षी हो जाते थे, वैसे जानवरों का राजा लोग वध करते थे, युद्ध करते थे उससे और वीरतापूर्वक उनको वध कर देते थे। दशरथ जी भी उनके राज्य में एक बहुत बड़ा हिंसक जानवर आ गया था, तो रात्रि में उसका वध करने के लिए सरजू नदी के तट पर बैठे थे, उसी समय गलती से श्रवण का वध कर दिए थे। शिकार के क्रम में दशरथ को श्रवण को वध कर दिए थे। तो इस पर भी लोग प्रश्न करते हैं कि क्यों दशरथ जी शिकार करने क्यों गए थे, इसलिए कि कोई हाथी कभी जंगल में पागल हो जाता है, कभी सिंह जो है नरभक्षी हो जाता है, तो गांव में भी आकर लोगों को खा जाते हैं, तो राजा लोग ऐसे जानवरों का वध करते थे। रात्रि में जब ऐसे जानवर पानी पीने आते थे तो उनका वध करते थे, या कभी कभी असुर भी अपना आतंक फैलाते थे तो राजा लोग उनका वध करते थे। शिकार करने का उद्देश्य यही है, राजा को शिकार करने का छूट है, ऐसे जानवरों का, हिंसक जानवरों का शिकार करता है, या युद्ध के प्रशिक्षण के लिए राजा लोग शिकार करने के लिए जाते थे और ऐसे जानवरों का वध करते थे। वैदेही हरणम, मृग के पीछे भगवान श्री राम जा रहे थे, इसी क्रम में रावण जो है सीता का हरण कर लेता है। वैदेही हरणम, सीता का जब हरण हो जाता है, रावण जो है मारीच की सहायता से सीता का हरण किया था। मारीच ही मृग बना था, मारीच बहुत मायावी था और बहुत सिद्धि जानता था। वो पहले बक्सर में विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में उपद्रव करता था, सुबाहु, त्रिशिरा, मारीची, ये सब असुर जो है विश्वामित्र के यज्ञ को भ्रष्ट कर देते थे। तो विश्वामित्र भगवान श्री राम को लेकर अयोध्या से बक्सर में आए थे, तो यज्ञ विध्वंस के क्रम में ही भगवान श्री राम ने एक तिनका से, तिनका को अभिषिक्त करके बाण से मारे थे, तो वही मारीच जो है यहाँ गिरा था समुद्र के तट पर। मारीच यहाँ पंचवटी में या अरब सागर के तट पर रहता था। तो रावण का मामा लगता था, तो रावण जानता था कि मारीच बहुत सिद्धि जानता है, माया से कई रूप बना सकता है। तो रावण जो है लंका से विमान से आया था पंचवटी में, चाहे ये क्षेत्र में कहिए, ये क्षेत्र में बड़े बड़े असुर रहते थे, जैसे खर, दूषण, उनका भी यही क्षेत्र था। जैसे कुछ लोग कहते हैं जो खार घर है वो खर दूषण इधर खर दूषण रहते थे, खर और दूषण ये भी बहुत बलवान थे। ये जो बंबई से नासिक, पुणे, ये सब जो जगह, इधर बड़े बड़े असुर रहते थे। तो भगवान श्री राम इसलिए इधर आए थे इनका वध करने के लिए। भगवान श्री राम जहां जहां बड़े बड़े असुर रहते थे वहां घूम घूम कर उनका वध करते थे। वो माया मृग का ही नहीं बल्कि मायावी जितने असुर निशाचर थे उनको घूम घूम कर वध करते थे। तो ये क्षेत्र में जितने असुर थे, तो रावण जो है लंका से यहां लैंडिंग किया था और अपना कार्य करने के लिए मारी से कहा कि तुम माया मृग बन जाओ। मारी ने कहा कि तुम जानते नहीं हो, भगवान श्री राम है, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार हुआ है इनका। अब मैं इनके प्रभाव को जानता हूं, इन्होंने घास लेकर के मुझे मारा था, बक्सर से मैं यहां गिरा हूं। तुम इनकी सामना मत करो, इनसे बैर मत लो, इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। रावण कहता कि नहीं नहीं, ये मेरे बहन सुपनखा का नाक कान काट दिया है, निर्दोष सुपनखा का नाक कान काट दिया है। सुपनखा भी एक बार पंचवटी में आई थी और भगवान श्री राम के सौंदर्य को देख करके मोहित हो गए। कंदर पको टिकमनी, भगवान राम इतने सुंदर हैं कि करोड़ों काम देव उन पर लुब्ध हो जाते हैं। तो सुपनखा कहे कि आप बहुत सुंदर हैं और मैं भी बहुत सुंदरी हूं, मैंने अब तक विवाह नहीं किया है, आपको देखकर कुछ कुछ मेरा मन जो है विवाह करने के लिए आपसे हो रहा है। तो विवाह का प्रस्ताव सुपनखा ने रखा और बहुत सुंदर रूप बनाई थी, पुतना जैसे सुंदर रूप बनाकर गई थी वैसे। तो भगवान राम समझ गए कि ये बहुत छल कपट करने वाली स्त्री है और ये अलग अलग पति बदलती है, इसका कई विवाह हुआ है और कितना बड़ा डाइवर्स हुआ है, ये झूठ बोल रही है। भगवान राम जान गए, बोले कि ठीक है, विवाह करना चाहती हो तो मेरा भाई है उसका विवाह नहीं हो। भगवान भी झूठ बोले क्योंकि वो झूठ बोली। भगवान कहते हैं जे जथामाम प्रपद्यन्ते, जो जैसा करता है वैसे भगवान भी। भगवान छलियों में सबसे बड़े हैं, गीता में भगवान कहते हैं दूतम छलयताम अस्मि, मैं दूत क्रीड़ा छलों में दूत क्रीड़ा हूं। भगवान को कोई छल नहीं सकता है। तो सुपनखा भगवान राम को छलने के लिए आई थी लेकिन वो छल नहीं पाई। भगवान अपने बलि महाराज को भी छलने के लिए बामन रूप धारण किए थे, भक्त से युद्ध नहीं कर सकते हैं तो छल करने के लिए बामन रूप धारण किए। तो भगवान सबसे बड़े छलिया हैं। तो कहे कि देखो मैं विवाह कर लिया, मेरी प्रमाण में पत्नी है, और मैं पत्नी के रहते हुए विवाह नहीं कर सकता हूं, मैं एक पत्नी व्रत लिया हूं, मेरे भाई के पास जाओ। सुपनखा गई और कही कि तुम मुझसे विवाह करो तो तुम्हारे भाई बड़े भाई का आदेश है कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। तो लक्ष्मण जी कहे कि मैं इनका सेवक हूं, दास हूं, मुझसे अगर विवाह करोगी तो दासी बन जाओगी, ये राजा है इनसे विवाह करो तो रानी बनोगी, मैं तो इनका दास हूं, दासी बनने में तुम्हें क्या मिलेगा, तुम जाओ इनके पास इनसे ही विवाह करो। तो गई सुपनखा तो देखी कि ये बीच में स्त्री बाधक बन रही है, इसी को मैं मार देती हूं। तो सीता को मारने के लिए जैसे वो प्रयास की तो भगवान श्री राम लक्ष्मण को इशारा कर दिए तो लक्ष्मण जी उसके नाक कान को काट दिए, नाक कान बिन भई बिकराला, विकराल हो गई नाक, अपना स्वरूप में आ गई, अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई, वो विकराल रूप धारण पर्वताकार, और उसके नाक कान से ऐसे खून बह रहे थे जैसे कोई पर्वतमाला से गेरू की धारा बहती है, जैसे रक्त की धारा बहती है वैसे पर्वताकार हो गई। और वो रोते हुए फिर आकाश मार्ग से वो भागी, वो आकाश में भी चलती थी, जैसे पुतना आकाश में भी चलती थी खेचरी, वैसे भी आकाश में तुरंत वहां से आकाश मार्ग से जाकर के खर के पास गए। खर दूषण कही कि यहां दो राजकुमार आए हैं और उनके साथ एक सुंदर स्त्री है, बहुत बलवान है, वह कारण ही मेरा नाक कान काट दिए। वो कही नहीं कि मैं उनसे विवाह करना चाहती थी, कहे कि मैं ऐसे ही गई थी और घूम रही थी तो मेरा नाक कान वो लोग काट दिए। खरदूषण जो है ये सुनकर बहुत क्रोधित हुआ और तुरंत 14,000 सेना लेकर के उनको मारने के लिए आता है। भगवान श्री राम यह जान करके कि खरदूषण सेनाओं के साथ आ रहा है तो लक्ष्मण को कहे कि सीता को किसी गुफे में रख दो, नहीं सीता को भगवान श्री राम ने कहा कि तुम अग्नि में बास कर जाओ और मैं अब ललित नर लीला करने जा रहा हूं, और असुरों का विनाश करने वाला हूं, तो तब तक ले तुम अग्नि में निवास कर जाओ। तो सीता अग्नि में वास कर गई और माया सीता जो है प्रकट, माया सीता को ही रावण ले गया था, असली सीता को नहीं। तो खरदूषण जब चला तो आकाश पूरा धूल से भर गया और चतुरंगनी रथी भी थे, आकाश से चलने वाले भी थे, कुछ पैदल चलने वाले सेना थे, हाथी घोड़े वाले सैनिक थे, तो भीषण युद्ध हुआ। उसकी सारी मायावी सेना को भगवान चंद मिनट में ही खत्म कर दिए। जैसे सूर्य जो है आते हैं तो अंधेरा भाग जाते, वैसे भगवान राम के सामने सारी सेना ध्वस्त हो गई, खरदूषण का वध हो गया। फिर सुपनखा जो है रावण के पास जाती है, रावण को कहती है कि देखो दो राजकुमार आए हैं और बहुत बलवान है, उनके साथ में एक सुंदर स्त्री है, तुम्हारे लिए मैं स्त्री को लाने का प्रयास कर रही थी, वो लोग मेरा नाक कान काटती है। मैंने कहा कि दशानन राजा है, तुम इतनी सुंदर स्त्री हो, चलो तुम लंका की रानी बन जाओ। वो वास्तव में वो तपस्वी, उनके बाद वो स्त्री की क्या जरूरत है, तपस्वी लोग स्त्री नहीं लेकर चलते हैं, वो तो तापस वेश विशेष उदासी, उनका ड्रेस भी तपस्वी का है, जंगल में ही रहते हैं, गांव में नहीं जाते हैं, तो स्त्री क्यों लेकर चलते हैं। इसे शिक्षा भी मिलता है कि स्त्री लेकर नहीं चलना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं कि रूपवती भार्या शत्रु, ऋण करता पिता शत्रु और रूपवती भार्या शत्रु, दो और है, ऋण करता पिता शत्रु, पिता जो है जो ऋण किया है वो शत्रु है, माता च व्यभिचारिणी, और रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडिता, जो मूर्ख पुत्र है वो शत्रु है और रूपवती स्त्री भी शत्रु। कभी कभी राजा लोग ले जाते हैं या कभी स्त्री को दूसरे लोग ले जाते हैं, सुंदर स्त्री को, तो ये भगवान श्री राम तपस्वी वेश में सुंदर स्त्री लेकर क्यों चल रहे थे, ये नीति के विरुद्ध था, सुपनखा करे की नीति के विरुद्ध है। अब जंगल में हो तो अपनी रक्षा के लिए स्त्री मत लेकर चलो, इसलिए बाहर जाना चाहिए लंबे समय के लिए तो स्त्री लेकर नहीं जाना चाहिए, ज्यादा पैसा लेकर नहीं जाना चाहिए, पैसा ज्यादा लेकर चल रहे हैं तो भी ये है, जैसे सनातन गोस्वामी के सेवा किसान पैसा लिया था, तो सनातन गोस्वामी कहे कि तुम यमराज को लेकर क्यों चलते हो, स्त्री को भी लेकर चलना है, यमराज को लेकर चलना है। तो सुपनखा ने कहा कि तुम्हारे योग्य स्त्री है, लेकिन मैंने उसको फुसला कर लाना चाहा, लेकिन मेरा नाक कानियों लोग काट दिए, और इसके पहले खरदूषण का भी वो लोग वध कर चुके। तो रावण विचार किया कि ऐसी बात है, फिर विचार करता है कि खरदूषण तो मेरे समान ही बलवान थे और उनको भगवान के सिवा और कोई नहीं मार सकता है, खर और दूषण मेरे समान ही बलवान है, उनको वरदान है कि भगवान के अलावा और कोई नहीं मार सकता है, तो हो सकता है कि भगवान ने अवतार ले लिया है, पृथ्वी का भूभार हरण करने के लिए भगवान का अवतार हो गया है, रावण समझ गया। तो रावण विचार करता है कि अगर भगवान होंगे तो इनके द्वारा मैं पूरा सब परिवार युद्ध करके मुक्त हो जाऊंगा असुरी वृत्ति से, अगर सामान्य कोई राजकुमार होंगे तो इनको मार करके या बंदी बनाकर इनकी स्त्री को ले लूंगा। तो इसी क्रम में मारिच के सहयोग से सीता को ले आता है और ये प्लान किया था कि अगर इनसे युद्ध हम करेंगे, अगर सामान्य कोई मानव होंगे तो इनको हम जीत लेंगे, यानी भगवान होंगे तो पूरी सेना जो है, पूरी आसुरी सेना इनके हाथों मर करके, क्योंकि तामसिक वृत्ति से भजन नहीं हो सकता है और बिना भजन किए कोई धाम को जा नहीं सकता है, बिना भजन किए कोई भवसागर को नहीं तर सकता है, तो एक ही उपाय है कि हम लोग युद्ध कर सकते हैं आसुरी आश्री वृत्ति में क्या कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, तो इनसे बैर करके युद्ध करके मैं इनके हाथों मर करके शुद्ध हो जाऊंगा, ये रावण का प्लान था। तो रावण जो है इस तरह से युद्ध के लिए तैयारी किया और सीता को ले आया अशोक वाटिका में। फिर सीता के हरण के क्रम में वो आकाश मार्ग से जब ले जा रहा था सीता को, तो सीता विलाप कर रही थी, माया सीता, और ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जी रहते थे, तो अपना आभूषण उन्होंने गिराया था, तो वही आभूषण सुग्रीव जी रखे थे कि किसी स्त्री का आभूषण है, और देखे कि एक स्त्री विलाप करके जा रही है, और सुग्रीव जी समझ गए कि कोई असुर जो है ले जा रहा है। तो भगवान राम जब सीता हरण होने के बाद सीता का अन्वेषण कर रहे थे, तो ऋषिमुख पर्वत से जा रहे थे, तो ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ रहते थे, तो सुग्रीव जी देखे कि दो युवक आ रहे हैं इधर, तो उनको शंका हुआ कि बाली के कोई दूत हैं। बाली के भय से सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे, क्योंकि बाली ने सुग्रीव को बहुत मार करके उनकी स्त्री को उनका धन ले लिया था, और अपने भाई बाली के भय से सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत का आश्रय लिए थे, क्योंकि ऋषिमुख पर्वत पर बाली नहीं जाता था, सांप था, मतक मुनि ने सांप दिया था कि अगर इधर आओगे तो जल जाओ, तो उस पर्वत पर वो रहते थे। तो एक दिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव जी कहे कि हे हनुमान, ये कोई लगता है बाली के भेजे हुए कोई गुप्तचर हैं, आप पता लगाइए कौन है। तो हनुमान जी ब्रह्मचारी का भेष बना करके गए पता लगाने के, दोनों आदमी कौन है, कोई बाली के तो अनुचर नहीं है। तो देखे तो पूछे कि आप कौन है, सुंदर इतने सुंदर रूप में तपस्वी वेश में श्याम और गौर वर्ण में आप कौन है, कोतुम श्यामल गौर शरीरा, श्याम गौर वर्ण में आप दोनों कौन है, वन में विचरण कर रहे हैं आप, नंगे पांव जंगल में घूम रहे हैं, इतने सुंदर हैं, देखने में आप राजा के पुत्र लगते हैं, लेकिन तपस्वी वेश में क्या है। तो भगवान श्री राम कहे कि हम लोग दशरथ के पुत्र हैं और पिता के वचन मानकर वनवास के लिए आए हैं, 14 वर्ष वनवास करना है, और यहाँ जंगल में निशाचरों ने मेरी स्त्री को हर लिया है, हम उसका पता लगा रहे हैं। तो हनुमान जी समझ गए कि ये भगवान श्री राम है, तो तुरंत भगवान के चरणों में गिर गए, अपना स्वरूप प्रकट किए और कहे कि हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी की तरह आपसे प्रश्न किया था, आप कौन हैं, मैं आपको समझ नहीं पाया, लेकिन आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो जानते हैं, आपने क्यों परिचय मेरा पूछा। भगवान राम भी पूछे थे कि आप कौन हो, तो कहे कि आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं तो बानर जाति का हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, अज्ञानी हूं, मैं आपको प्रारंभ में नहीं समझ पाया था, लेकिन आप भी ऐसे पूछे मुझसे जैसे आप कुछ नहीं जानते हैं, जबकि आप सब कुछ जानते हैं, आप पृथ्वी के एक एक कण को भी गिन सकते हैं, पृथ्वी के एक एक कण को भी आप जोड़ सकते हैं, विलय कर सकते हैं, सबके मन की इच्छाओं को भी आप एक साथ पूर्ण कर सकते हैं या निरस्त कर खत्म कर सकते हैं। तब हनुमान जी कहे कि आप यहाँ सुग्रीव जी रहते हैं, इनकी स्त्री को भी बाली ने ले लिया है, जैसे आपको स्त्री को निशाचरों ने ले लिया है, ये भी बहुत भयभीत रहते हैं बाली से और ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं, इनसे आप मित्रता करिए, ये सीता का पता लगाएंगे। तो हनुमान जी की सहायता से भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता होती है, सामान्य में मित्रता होती है, तो दोनों समान थे, ये भी स्त्री विरह में थे और सुग्रीव भी स्त्री विरह में सुग्रीव की भी स्त्री को भी बाली ले लिया था, तो मित्रता होती है। फिर भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं अवश्य बाली का वध करूंगा, बाली निर्दलनम, और तुम्हारी जो स्त्री को ले लिया है और तुम्हारा जो राज ले लिया, मैं तुम्हें वापस करूंगा। भगवान अग्नि का साक्षी लेकर प्रतिज्ञा किए कि अवश्य मैं तुम्हारा कार्य करूंगा, तुम हमारा मित्र हो गए हो। मित्र के रज के धूल के बराबर दुख को भी मित्र बड़ा समझता है। भगवान श्री राम सुग्रीव के दुख से दुखी हो गए और सुग्रीव जी भी कहे कि मैं भी सीता का पता लगाऊंगा, मैं भी आपके कार्य के लिए भरपूर मदद करूंगा। दोनों में ये हो गया, संधि हो गया कि मैं आपका कार्य करूंगा, आप हमारा कार्य करेंगे। कुछ समय के बाद भगवान श्री राम बाली का वध कर देते हैं। बाली बहुत बलवान था, उसके सामने जो भी जाता था उसका बल ले लेता था। यहां तक कि रावण को भी उसने अपने भुजा में दबा कर रखा था। रावण का बल भी नहीं चलता था बाली के आगे, इतना बलवान था बाली। तो भगवान श्री राम जब बाली का वध किए तो बाली कहता कि आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सबके लिए सम हैं, आप मुझे व्याधे की तरह क्यों मारे? भगवान छुप करके मारे थे, जैसे बहेलिया मारता है कोई जानवर को, क्योंकि देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने उसे वचन दिया था। तो ब्रह्मा जी के वचन को भंग न करते हुए उन्होंने छुप कर मारा था। भगवान ऐसे भी मार सकते थे। तो बाली कहता है कि आप के सामने जो जाता है उसका जीवन का सारा पाप दूर हो जाता है। जैसे सूरज के सामने अंधेरा नहीं टिकता है, वैसे आपके सामने ही जीव जैसे आपके सम्मुख होता है तो उसका जीवन का सारा पाप खत्म होता है। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, आप अनेक जन्म जन्मांतर के पाप को चुरा लेते हैं। भगवान चोरों में श्रेष्ठ हैं, चोरा ग्रगण्यम। भगवान जीव का हर चीज चुरा लेते हैं, अनेक जन्मों का जो पाप है वो भी चुरा लेते हैं। भगवान कोई साधारण चोर नहीं है। जो जीव के जन्म जन्मांतर का जो पाप है, जो उसको हृदय कंदर में छुपा हुआ है, वो पाप को भी भगवान चुरा लेते हैं। तो हमारा जितना पाप था, आप अब संभव कैसे है कि वो हमारे साथ रहेगा? मैं अभी पापी नहीं रहा हूं और मैं बैरी हूं और सुग्रीव आपका प्रिय है, कैसे हो सकता? आप तो समदर्शी हैं। जैसे पारसमणि के संसर्ग में लोहा जाता है तो उसको सोना बना देता है, वह दुविधा नहीं रखता है कि ये लोहा कसाई के घर का आया है या लोहा जो है कोई ब्राह्मण के घर का है, यह दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। जैसे पारस मणि असमंजस में नहीं होता है, चाहे वो लोहा बधिक के घर का हो, चाहे लोहा वो पुजारी के घर का हो, उसको स्पर्श होते ही सोना बना देता है। वैसे आप तो समदर्शी हैं। और उदाहरण देते हैं, जैसे गंगा जो है, गंगा में अगर कोई मल मूत्र नाली का पानी भी जाता है तो वो भी गंगा के समान हो जाता है। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो जब मिल दो एक बरन भयो सुरसर नाम परो। छोटे छोटे नाले भी गंगा जी में जब मिलते हैं तो भी गंगा के समान हो जाते हैं। तो हे प्रभु, आप मुझे व्याधे की तरह क्यों मारे? तो भगवान राम कहे कि देखो, तुम अपने पत्नी की स्त्री को अब रख लिया था, अनुज बधु भगिनी सुतनारी। अनुज बधु छोटे भाई की स्त्री को जो हरण कर लेता है, भगिनी सुत अपने बेटे की स्त्री, इनके साथ जो कुदृष्टि से देखता है वो उसका वध करने में कोई पाप नहीं होता है। भगवान तर्क दिए, लेकिन ये तर्क जो है बाली के तर्क के आगे नगण्य हो गया। अंत में भगवान कहे कि कहो तो मैं तुम्हें अचल कर देता हूं, अमर कर देता हूं। वास्तव में जीव भगवान के सम्मुख होता है तो शुद्ध हो जाता है, बिल्कुल उसके जीवन के समस्त पाप दूर हो जाते। तो भगवान कहे कि कहो तो तुम्हें मैं फिर से अमर अजर अमर कर देता हूं। तो बाली कहता है कि नहीं नहीं, जोगी लोग जीवन भर यत्न करते हैं और अंत में उनके नाम से भी आपका नाम नहीं आता है। यहां आप तो अंत समय मेरे सामने खड़े हैं, अब मेरे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। जोगी लोग भक्त लोग क्या करते हैं, जीवन भर भजन करते हैं कि भगवान का अंतमति सागति, आप तो स्वयं अपने श्री विग्रह से मेरे समक्ष खड़े हैं, तब अब मेरे जीवन में क्या शेष रह गया है। तो बाली इस तरह से भगवान के परम गति को प्राप्त करता है। फिर भगवान श्री राम इसके बाद समुद्र के ऊपर पुल बनाते हैं, समुद्र तरणम, समुद्र में 100 योजन का पुल बनाते हैं, कुछ दिनों में पुल निर्माण कर देते हैं। फिर लंका पार जाते हैं। लंका पार जाने के लिए समुद्र बनाने की क्या जरूरत थी, भगवान ऐसे भी जा सकते थे, हनुमान जी तो ऐसे ही तैर गए थे। हनुमान राम भक्त हनुमान ऐसे समुद्र को पार कर गए, लेकिन भगवान समुद्र में क्यों पुल बनाए, कि समुद्र के मर्यादा के लिए और एक कीर्ति के लिए। भगवान अद्भुत कर्मा है, आज तक कोई समुद्र में इतना लंबा पुल नहीं बनाया है, 400 कोस का पुल कहीं किसी ने नहीं बनाया है, तो यह भी भगवान के अति पराक्रममय लीला है। और 4 दिन में ऐसा बड़ा समुद्र का निर्माण हो गया था, 400 कोस में समुद्र में पुल बनाना हो तो 4 दिन में उसका फार्मा भी तैयार नहीं हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर भी नहीं बना सकते हैं, या कितना लोहा लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना उसमें पिलर होगा, उसका डायग्राम में भी कैलकुलेशन करके 4 दिन में नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े आर्किटेक्टर को कई महीनों सालों लग जाता है बनाने में, नहीं भगवान 4 दिन में उतना बड़ा समुद्र बना दिए। इसलिए भगवान का एक नाम है अद्भुत कर्म, भगवान अद्भुत कर्म कर सकते हैं। और पुल बनाकर भगवान सारी बांदरी सेना को उस पर पार उतार दी, लंका में गए और लंका में बड़े बड़े असुरों का वध किए, लंका पुरी दहनम, हनुमान जी तो लंका पहले ही दहन कर चुके थे, पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन एतद्धि रामायण, और रावण और कुंभकर्ण का वध करते हैं। रावण भी अमर था, उसके नाभि में अमृत का कुंड था, वो मर नहीं रहा था, जैसे भगवान उसके सिर को काटते थे फिर नया सिर आ जाता था। अंत में भगवान ने अग्नि बाण उसके नाभि कुंड में मारा तो अमृत जो था वो जल गया, तब रावण मारा। रावण बहुत बलशाली था, उत्तम कुल ब्राह्मण कुल में जन्म, उत्तम कुल पुलस्त करनाथ शिव विरंची, शिव और ब्रह्मा की विविध प्रकार से पूजा करता था, और शिव ब्रह्मा इतने प्रसन्न थे उसके अमरत्व का वर दिए थे, उसके नाभि में ही अमृत निवास करता था, तो मरता नहीं था, अजर अमर था। और रावण इतना बड़ा पुजारी था कि फूल नहीं चढ़ाता था, सिर चढ़ाता था। अब फूल खरीदने में ये हो जाते हैं, कंजूसी करते हैं कि इतना महंगा फूल नहीं लेंगे, कभी कभी लोग बोलते नहीं इतना महंगा हम फूल नहीं लेंगे, लेकिन रावण जो है फूल नहीं, अपने सिर को ही फूल की तरह चढ़ाता था, इतना बड़ा भक्त कोई नहीं हुआ है। इसलिए शिव और ब्रह्मा बहुत प्रसन्न थे, और उत्तम कुल पुलस्त मुनि का ग्रैंडसन था, विश्रवा का पुत्र था, डायरेक्ट उसका कनेक्शन जो है ब्रह्मा जी से था, इतना बड़ा पुजारी था। और पूजा करता था तो कुछ मांगता नहीं था, वो निष्काम भक्ति करता था, शिव जी की विविध प्रकार से पूजा करता था, लेकिन भगवान राम से जब द्वेष किया, ईर्ष्या किया, तो भगवान राम ने ही देवताओं के सभा में उपाय बता दिया कैसे मरेगा। सब देवताओं के सभा में मीटिंग हुई कि रावण कैसे मारा जा सकता है, तो उस समय शिव जी भी थे, शिव जी ने कहा कि हरव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, भगवान तो सर्वत्र हैं और जहां भी उनका कीर्तन हो वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं, और भगवान के पास हम लोग जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं, ये भगवान के द्वारा ही मारा जा सकता है। शिव जी ने कहा कि और किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता है, जबकि उनका भक्त था, जीवन भर उनका पूजा किया था, लेकिन शिव जी जब कोई भगवान से द्वेष करता है तो उसको माता पिता भी यमराज के समान हो जाते हैं। मात मृत्यु पितु समन समाना, मात मृत्यु के समान पिता यमराज के समान हो जाते हैं। और जो भी देवता लोग हैं फिर उसे सहयोग करना छोड़ देते हैं। जैसे जयंत ने सीता के चरण में चोच मारकर भागा था, इंद्र का पुत्र था, लेकिन भगवान से जैसे देश किया तो कोई उसकी रक्षा नहीं किया, कोई बैठने के लिए भी नहीं कहा कि बैठो विश्राम करो। इसलिए रावण भगवान राम से द्वेष किया, इसके चलते उसका पूरा वंश जो है समाप्त हो गया। लेकिन इसके पीछे उसका विज्ञान ये था कि पूरे परिवार के साथ वो जो है असुर कुल से मुक्त हो जाए। तो रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था और बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, खगोल शास्त्र का भी उसे ज्ञान था, सारे ग्रहों के विषय में जानता था। इसलिए वो चाहता था कि स्वर्ग में, स्वर्ग से एक सेतु बनाना चाहता था कि लोग स्वर्ग से आना जाना करेंगे। जैसे अभी लोग सेतु बनाना चाहते हैं ना लंका से जाने के लिए, तो रावण भी एक सेतु बनाना चाहता है पृथ्वी से स्वर्ग तक कि लोग स्वर्ग में आएंगे आवागमन के लिए। मतलब बहुत बड़ा विज्ञान जानता था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसका ज्ञान जो है काम में नहीं आया और वो जो चाहता था वो नहीं कर पाया था। वो बहुत कुछ चाहता था लेकिन एक चीज में सफल हुआ कि भगवान के हाथों मर करके वो उत्तम गति प्राप्त किया, ये उसकी इच्छा थी। हरे कृष्ण। समय हो गया है, अभी प्रसाद का समय हो गया है। से रामायण तो पूरा रामायण कहने में बहुत समय लगेगा, इस समय के अनुसार मैंने प्रयास किया है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, विजयादशमी महामहोत्सव की।